یوداہ مکابی 166 سے 160 عیسوی پورو، یوداہ کی یش گاتھا، ادھیائے 3۔ متتھیا کا پتر یوداہ، جو مکابی کہلاتا تھا، اس کا اترادھیکاری بنا۔ اس کے سبھی بھائیوں اور ان سب لوگوں نے جو اس کے پتا کے پکش میں تھے اس کا ساتھ دیا۔ وہ اسرائیل کے لیے سہرش لڑتے رہے۔ اس نے اپنی جاتی کے لیے یش کمایا۔ اس نے بھیم کائے یودھا کی طرح کوچ پہنا اور اپنے آستر شستر دھارن کیے۔ وہ لڑتا اور اپنی تلوار سے شیور کی رکشا کرتا رہا۔ وہ یودھ میں سنہ جیسا تھا، سنہ شاوک جیسا جو شکار پر گرشتا ہے۔ اس نے جگہ جگہ ودھرمیوں کا پتا لگایا اور ان کا پیچھا کیا۔ جو لوگ اس کی جاتی پر اتیاچار کرتے تھے اس نے انہیں جلا دیا۔ اس کے آتنک سے ودھرمی لوگ دب گئے اور سب کرمی گھبرا گئے۔ اس نے اپنے باہوبل سے ادھار کا مارگ پرشست کیا۔ اس نے بہت سے راجاؤں کو تنگ کیا، کنتو یاکوب کو اس سے سکھ ملا۔ اس کے نام کا یش صدا گایا جائے گا۔ اس نے یودا کے نگروں میں جا جا کر دشٹوں کو وہاں سے بھگایا اور اسرائیل پر سے ایشور کا پرکوپ دور کیا۔ اس کا نام سنسار کے سیمانتوں تک پھیل گیا۔ اس نے انہیں ایکتر کیا جن کا وناش نکٹ تھا۔ یوداہ کی پرارمبھک وجے۔ اپلونیس نے اسرائیل سے لڑنے کے لیے غیر یہودیوں اور سماریا کے نواسیوں کی ایک بڑی سینا تیار کی۔ جیسے ہی یوداہ کو اس بات کا پتا چلا، وہ اس کا سامنا کرنے نکلا۔ اس نے اسے پراجت کیا اور اس کا ودھ کیا۔ بہت سے لوگ گھائل ہوئے اور مارے گئے، شیش یودھا بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے ان کا سامان لوٹا۔ یوداہ نے اپولونیس کی تلوار لے لی اور بعد میں جیون بھر یودھ میں اس کا اپیوگ کیا۔ جب سیریا کے سیناپتی سیرون نے سنا کہ یوداہ نے اپنے انویائیوں کی سینا تیار رکھی ہے، تو اس نے کہا، میں نام کماؤں گا، راجیہ میں کھیاتی پراپت کروں گا، میں یوداہ اور اس کے انویائیوں کو پراجت کروں گا جو راجہ کی اوہیل نہ کرتے ہیں۔ اس لیے اس نے اسرائیلیوں سے بدلہ لینے کے لیے ودھرمیوں کی ایک بڑی سینا تیار کی اور اس کے ساتھ پرستھان کیا۔ وہ بیت ہورین کے چڑھاؤ تک ہی آ سکا تھا کہ اس سمے یوداہ اپنا چھوٹا سا دل لے کر اس کا سامنا کرنے پہنچا۔ یوداہ کے یودھاؤں نے اپنے ورودھ آئی سینا کو دیکھ کر اس سے کہا، ہماری سنکھیا بہت کم ہے، ہم اتنی بڑی اور شکتیشالی سینا سے کیسے یودھ کریں گے؟ اس کے سوا ہمیں کھانے کو آج کچھ بھی نہیں ملا ہے اور ہم تھکے ماندے ہیں۔ یوداہ نے اتر دیا، یہ آسانی سے ہو سکتا ہے کہ ایک بڑا دل تھوڑے لوگوں سے ہار جائے، کیونکہ تھوڑے ہی لوگ ہوں یا بہت بڑی سینا ہو، اس کا ایشور کے لیے کوئی مہتو نہیں۔ یدھ میں وجے سینا کی وشالتا پر نہیں بلکہ اس شکتی پر نربھر ہے جو سورگ سے ملتی ہے۔ یہ اہنکاری اور دشٹ لوگ ہماری پتنیوں اور ہمارے بچوں کا ناش کرنے اور ہمیں لوٹنے، ہم پر آکرمن کرنے آ رہے ہیں، کنتو ہم اپنے پرانوں اور اپنی سمہتا کی رکشا کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ایشور ہماری آنکھوں کے سامنے ان کا ناش کرے گا، تم ان سے مت ڈرو۔ یودا اپنی بات سماپت کر اچانک شترو پر ٹوٹ پڑا۔ اس کے سامنے سیرون اور اس کی سینا کا وناش ہو گیا۔ انہوں نے بیت ہورون کے اتار سے میدان تک ان کا پیچھا کیا۔ شترو کے 800 آدمی مارے گئے اور باقی لوگ فلسطینیوں کے دیش بھاگ گئے۔ तब लोग यूदा और उसके भाइयों से डरने लगे और आसपास के गैर यहूदियों पर उनका आतंक छा गया। उसकी ख्याति राजा के कानों तक पहुंच गई और यूदाह की युद्ध कुशलता की चर्चा सर्वत्र होने लगी। यरूशलेम पर आक्रमण की तैयारियां। ये सुनकर राजा अंतियोख आग बबूला हो उठा। उसने अपने राज्य के सब योद्धाओं को बुलाया और एक विशाल सेना एकत्र हो गई। उसने अपने कोष से सैनिकों को वर्ष भर का वेतन दिया और ये आज्ञा दी कि वे हर स्थिति के लिए तैयार हो जाएं। उसने देखा कि कोष में पैसा समाप्त हो रहा है और प्रदेशों से कर कम मिल रहा है, क्योंकि देश भर में इसलिए अशांति और आतंक फैल रहा था कि उसने प्राचीन काल से चले आ रहे विधि निषेधों को रद्द कर दिया था। उसे डर था कि अब दैनिक खर्च और उन उपहारों के लिए उसके पास धन नहीं बचेगा जिन्हें वो अब तक इस प्रकार खुले हाथों लुटाता था, जिस प्रकार उसके पहले किसी राजा ने नहीं किया था। इससे वो बहुत घबरा गया और फारस के प्रांतों से कर वसूलने और बहुत सा धन एकत्र करने के उद्देश्य से उसने वहां जाने का निश्चय किया। उसने लीसियस नामक कुलीन और राजवंशी मनुष्य को फरात नदी से लेकर मिस्र की सीमा तक के राज्य पर नियुक्त किया और लौटने तक उसे अपने पुत्र अंतियोख की शिक्षा दीक्षा का भार सौंपा। उसने उसके हाथ आधी सेना और अपने हाथी दिए और उसे अपनी सब योजनाएं, विशेषकर यहूदिया और यरूशलेम के निवासियों के संबंध में बता दी। उसने कहा कि वो उनके विरुद्ध एक ऐसी सेना भेजे जो इज़राइल की शक्ति और यरूशलेम के बचे हुए लोगों का सर्वनाश करने और वहां उनकी स्मृति मिटाने में समर्थ हो। इसके बाद वो उनके क्षेत्र में विदेशियों को बसा दे और चिट्ठियां डालकर उनका देश बांट दे। सेना का शेष आधा भाग लेकर राजा ने 147वें वर्ष अपनी राजधानी अंताकिया से चलकर फरात नदी पार की और वो फारस के पठार की ओर बढ़ा। यूदा में शत्रुओं का प्रवेश। लीसियस ने राजा के मित्रों में इन शक्तिशाली व्यक्तियों को चुना, दोरिमेनस के पुत्र पतोलेमेउस, निकानोर और गोर्गियस को। उसने उन्हें 40,000 पैदल सैनिक और 7,000 घुड़सवार दिए, जिससे वे यूदा देश पर आक्रमण कर राजा के आज्ञानुसार उसका विनाश करते। वे अपनी सारी सेना लेकर निकल पड़े और उन्होंने अम्माउस के पास के मैदान में पड़ाव डाला। जब उस प्रांत के व्यापारियों ने इस विषय में सुना तो वे बहुत सा सोना चांदी तथा हथकड़ियां लेकर उनके शिविर पहुंचे, जिससे वे इजरायली दासों को खरीदें। सीरिया से और फिलिस्तियों के देश से एक एक दल उनका साथ देने आया। इधर यूदा और उसके भाइयों ने देखा कि स्थिति गंभीर है और शत्रुओं की सेना उनके देश में आ गई है। उन्होंने ये भी सुना कि राजा ने आदेश दे रखा है कि उनकी जाति का सर्वनाश कर दिया जाए। वे आपस में कहने लगे, हम अपनी जाति को विनाश से बचाएं और अपने पवित्र स्थान के लिए लड़ें। लोगों की सभा बुलाई गई जिससे वे युद्ध की तैयारी करें और दया और अनुकंपा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। यरूशलेम उजाड़ खंड की तरह निर्जन पड़ा था। उसके निवासियों में न तो कोई नगर आता और न कोई वहां से जाता था। मंदिर रौंदा गया था, गैर यहूदी गढ़ में बस गए, वो विदेशियों का अड्डा बन गया, याकूब से आनंद का विलोप हो गया और बांसुरी सितार सब मौन हो गए। मिस्पा के निकट यहूदियों की सभा। वे एकत्रित होकर मिस्पा आ पहुंचे, जो यरूशलेम के सामने है। मिस्पा में पहले इसराइलियों का एक प्रार्थना स्थान था। उन्होंने उस दिन वहां उपवास किया, टाट ओढ़ा सिर पर राख डाली और अपने वस्त्र फाड़े। जिस प्रकार गैर यहूदी अपनी देव मूर्तियों के सामने शकुन विचारते हैं, उसी प्रकार उन्होंने संहिता का ग्रंथ खोला। वे याजकीय वस्त्र ले आए, उन्होंने प्रथम फल और दशमांश चढ़ाए। उन्होंने उन लोगों को बुलाया जिनका नाजीर व्रत पूरा हो चुका था। तब उन्होंने स्वर्ग के ईश्वर की दुहाई देते हुए पूछा, हम इन लोगों के लिए क्या करें, हम इन्हें कहां ले जाएं? तेरा मंदिर रौंदा और अपवित्र किया गया है, तेरे याजक अपमानित होकर शोक मनाते हैं, गैर यहूदी हमारा विनाश करने एकत्र हो गए हैं, तू जानता है कि वे हमारे साथ क्या करना चाहते हैं, हम तेरी सहायता के बिना उनका सामना कैसे कर पाएंगे। इसके बाद उन्होंने तुरहियां बजाई और ऊंचे स्वर में दुहाई दी। इसके बाद यूदाह ने लोगों पर सेनापति नियुक्त किए, प्रति हजार 100, 50 और 10 पर एक एक अध्यक्ष। जो व्यक्ति घर बना रहे थे, जिनका विवाह हाल में हुआ था, या जो दाखबारी लगा रहे थे, या जो कायर थे, उनसे उसने संहिता के अनुसार ये कहा कि वे घर लौट सकते हैं। सेना ने प्रस्थान कर अम्माउस के दक्षिण में पड़ाव डाला। यूदाह ने कहा, शस्त्र धारण करो, वीरों की संतान की तरह दृढ़ रहो, और कल सुबह उन विदेशियों से लड़ने के लिए तैयार रहो जो हमारा और हमारे पवित्र स्थान का विनाश करने, हम पर आक्रमण करने आए हैं। अपनी जाति और पवित्र स्थान का विनाश देखने से तो ये कहीं अच्छा है कि हम युद्ध में मारे जाएं। ईश्वर जो चाहता है वो पूरा होकर रहेगा।